प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना।
भक्ति संगीत के श्रोताओं, आज आप सबसे रूबरू होने का दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपने मुझे एक नाम दिया है प्यारा सा, जगत गीतकार। दास अपने बचपन से ही चाचा जी के पास रहता था। चाचा जी अक्सर गीता पढ़ा करते थे और वो कहते थे कि परमात्मा, वो गीता में पढ़ के हमें बताते थे, 8-9 साल की मेरी उम्र थी, कि परमात्मा जो है कणकणवासी है, अविनाशी है, रंग है ना रूप है। तो मैं ऐसे ही 4थी-5वीं में शायद पढ़ता था तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा को जानना चाहिए, देखना चाहिए। तो एक दिन मैंने अपने चाचा जी से पूछ लिया कि परमात्मा कैसे मिल सकता है। तो कहने लगे, ये तो किसी शास्त्र के अनुसार यही कहा है कि भाई किसी सद्गुरु के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। तो मुंबई में मैं रहा करता था बचपन से, वहीं पढ़ाई की, 5वीं कक्षा में था शायद। तो थाना से एक मुमरा है, मुमरा के ऊपर एक ऐसे ही मजार जैसा बना है। क्लास में मेरे सहपाठी कन्हैयालाल जी थे, उनको मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, शायद कोई गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, परमात्मा के दर्शन करने हैं। और वो थाना से कम 350 किलोमीटर की दूरी पे हम रेल की पटरी के ऊपर चलते चलते परमात्मा से मिलने जाते हैं पहाड़ी पे। चलते गए चलते गए, आखिर में वो बच्चे ही थे, मैं भी बच्चा था, कन्हैयालाल जी रोने लगे, मैंने वापस जाना है। फिर हम वापस आए, लेकिन अंदर एक जिज्ञासा कि ईश्वर को जानना है, मुझे भी कोई सदगुरु मिले। बचपन से ही यूँ 11 साल की उम्र थी, दातार ने पुकार सुनी, कृपा हुई दास के ऊपर। दास के पड़ोस में एक सज्जन रहा करते थे, तो वो सत्संग जाते थे चेंबूर में, ऋषि व्यासदेव जी जहाँ रहते थे। तो मुझे भी ले गए, चल बच्चे। तो वहाँ जाते ही पहले ही दिन मुझे ज्ञान कक्षा में ऋषि व्यासदेव जी के सामने बिठाया गया। वैसे तो ज्ञान लेने वाले बहुत थे, मैं पीछे बैठा था। पता नहीं क्या दातार की कृपा थी, ऋषि व्यासदेव जी ने मुझे ज्ञान देते समय कहा बच्चे तुम आगे आके मेरे आगे बैठ जाओ। उन्होंने मुझे आगे बुला लिया और इशारा किया, ये निरंकार है, ये परमात्मा है। जैसे हमारे यहाँ प्रण देते हैं, 5 प्रण, 3 लोक 9 प्रकृति, ये निरंकार, ये 9 द्वार है, ये 10वां द्वार। तो एकदम से मुझे चाचा जी जो पढ़ते थे, इसका रंग नहीं है परमात्मा का, रूप नहीं है, आकार नहीं है, निराकार है, हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। तो उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि ये ही परमात्मा है जिसकी मैं तलाश करता था।
अविनाशी 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 रे, अविनाशी 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 रे, पाया है घट घट वासी रे मैंने, अविनाशी 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 रे, अविनाशी 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 रे, पाया है घट घट वासी रे मैंने, अविनाशी 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 रे। मन चाहा फल अपने घर में ही पाऊं, मन चाहा फल अपने घर में ही पाऊं, घर में ही सारे मैं तीरथ नहाऊं, घर में ही सारे मैं तीरथ नहाऊं, मेरे घर में है मथुरा काशी रे मैंने, अविनाशी 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 रे, अविनाशी 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 रे, पाया है घट घट वासी रे मैंने, अविनाशी 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 रे।
जिसको मिलने के लिए मैं मुमरा की तरफ रेल की पटरी पे चलता हुआ भी गया, तो उसके 68 की बात है, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरुबच्चन सिंह जी, राजमाता जी। तो दास के अंदर से एक गीत ने जन्म लिया, महीने के बाद ही, जैसे ये आत्मा एक बूंद है, ये अपने सागर से बिछड़ी है और ये अब सागर से मिल गई है। ये मेरा पहला गीत जो था कि रोती रोती और भटकती बूंद गिरी थी गागर में, मिली है अब ये सागर में, गाती गाती ये मुस्काती झूम रही है सागर में, गागर का पानी सागर में, सागर अब गागर में। ये गीत, फिर उसके बाद तुरंत दूसरा गीत, मैं मछली तेरी पिया सागर तू मेरा, छूटे ना कभी साथ तेरा मेरा। तो उसके बाद एक जिज्ञासा हुई कि दास जो है नेपाल का है, फिर नेपाल भी गए, गीत गाता ही रहा।
आयो आयो घोर कली जुग भाई अपनु धर्म संभाला, बढ़ना था लो गहिरो अंधारो, बढ़ना था लो गहिरो अंधारो, सत्य ज्ञान को दियो बाला। आयो आयो भोर कली जुग भाई अपनु धर्म संभाला।
तो ये मन में ये जिज्ञासा हुई, इस सच्चाई की आवाज़ को जो है वहाँ भी बुलंद करना चाहिए। वहाँ थोड़े बहुत महात्मा ज्ञान लेकर गए थे मुंबई से, लेकिन उस समय कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसा सोचा जाता था सरकार की तरफ से कि शायद ये धर्म विरोधी लोग हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा उनकी गलत फहमी थी। तो डर के मारे लोग रात को सत्संग करते थे, लेकिन दास जो है जब जाता था तो अपने घर के बाहर ढोलकी पकड़ना, जोर जोर से गीत गाना, मिशन की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करना, तो पुलिस आते थे मुझे पकड़ के जेल में डाल देते थे, ले जाते थे। तो रात को दातार ने आवाज़ इतनी अच्छी दी थी कि मैं अंदर बंद करते थे तो मैं गीत गाने लग जाता था।
जीवन हो यो भगने पानी, जीवन हो यो भगने पानी, को हो यो जिंदगानी, भज प्रभु लाई भज प्रभु।
तो पुलिस वालों को बड़ा अच्छा लगता था, वो ताला खोल के बाहर बिठा लेते थे जहाँ उन ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ सुनाओ गीत, दूसरे दिन ऐसे ही छोड़ देते थे, ये तो भगत है, भक्ति के गीत गाता है। उसके बाद फिर दिल में जिज्ञासा जागी कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, यहाँ तो हम सच्चाई की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर दास ऋषि व्यासदेव जी के चरणों में विनती की तो उन्होंने कहा चलो बेटा मैं चलता हूँ तुम्हारे नेपाल। वहाँ फिर ऋषि जी को भी ले गया दास, वहाँ ऋषि जी को भी पकड़ा, दास को भी पकड़ के अंदर डाल दिया, 3 दिन जेल में रहे। उसके बाद पता लगा नेपाल वालों को कि ये धर्म विरोधी लोग नहीं हैं। हमने कहा हम धर्म विरोधी नहीं हैं,
हम प्यारे प्यार फिजाने गरम हे साथी हरू हे भाई हरू, मानवता को हानि होने छा, हम कर्म पशु झर छो भने, दुनिया ले तमाशा हेरने छा, आपस मा हमी ले लड़ छो भने।
हम तो जो शास्त्र में लिखा है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कणकणवासी है, परमात्मा अंगसंग में है, परमात्मा सत्य है, अडोल है, अटल है, परमात्मा ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है, सबका परम पिता परमात्मा एक ही है, इसी के हम गुणगान करते हैं। ऐसा कहने से दातार की ऐसी कृपा हुई कि ऋषि जी को भी छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक नेपाल में मिशन अब ऐसा है कि 101 जगह भवन है। कहने का मतलब ये है, एक तो सच्चाई को जाना, जानने के बाद जो गाया जाता है उसका मोल होता है। गाने में तो संसार में बहुत सारे लोग गाते हैं, सूफी कलाम गाते हैं, कबीर के दोहे गाते हैं, तुलसी के दोहे गाते हैं, मीराबाई के भजन गाते हैं, लेकिन जानने के बाद, परमात्मा को देखने के बाद जो गाया जाता है उसका आनंद ही अलग होता है।
सबसे हम प्यार करें सबका ही सत्कार करें, नजर ऐसी के सब में तेरा दीदार करें, सबसे हम प्यार करें सबका ही सत्कार करें, नजर ऐसी के सब में तेरा दीदार करें, सबसे हम
किसी ने लिखा है कि कलाकार मनोरंजन करता है, भगत मनोमंथन करता है, कलाकार प्रभावित करता है, भगत प्रभु भावित करता है, भगत जो गाता है वो संगीत बन जाता है। तो गीत लिखा करता था, गाया करता था, तो एक दिन दिल में ऐसी जिज्ञासा जागी कि मैं गाता तो हूँ, किसी धुन को लेकर गाता हूँ, उसके ऊपर बनाता हूँ, वो पैरोडी कहलाता है, क्यों ना मैं संगीत सीख लूँ। तो बॉम्बे में एक सोनी साहब हुआ करते थे जिनके पास फिल्मों के बड़े बड़े गायक भी आकर सीखा करते थे। तो मैं वहाँ चला गया, मैंने कहा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी संगीत सीखना है। तो मैं गया तो वो 6 महीने तक खाली वो सारे गमा इतना ही सिखाते रहे जो सिखाते हैं शुरू में। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि आप क्यों संगीत सीखना चाहते हैं, आपको गज़ल गायक बनना है, प्लेबैक सिंगर बनना है या कव्वाल बनना है, तो मैं उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दूँ। मैंने कहा इनमें से मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मैं मुर्शद वाला हूँ, मुझे पूरे सदगुरु मिल चुके हैं, मुझे परमात्मा का ज्ञान हो चुका है, मैं सत्संग में गाता हूँ, जो मेरी सास संगत है वो मेरे गीत को बहुत पसंद करती है और वाहवा भी बहुत मिलती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं क्या गा रहा हूँ, कौन से राग पे गा रहा हूँ, यही सीखने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। तो आप यकीन मानिए कि वो सोनी साहब उस समय 70 साल के थे और मैं 16-17 साल का, उन्होंने जो है मेरे चरण को छू लिया, बोला आप पीर वाले हैं, आप मुर्शद वाले हैं, आपको मैं संगीत क्या सिखा सकता हूँ, आपके अंदर से अपने आप धुने निकलेंगे, आप जो गाओगे वही संगीत बन जाएगा, आप जो लिखोगे वो ग्रंथ बन जाएगा, वो काव्य बन जाएगा, जिसको पूरा सदगुरु मिल चुका है, जो पीर वाले हैं। उसके बाद फिर सीखने का ध्यान ही हटाया और फिर 80 का दौर आया, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में सदगुरु प्रकट हुए। उस समय दास ने एक गीत गाया कि बढ़ते चलो रुको नहीं,
बढ़ते चलो रुको नहीं, सुखी ये संसार करो,
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 सतगुरु गुरु वचन का हर सपना साकार करो,
सतगुरु गुरु वचन का हर सपना साकार करो, सतगुरु गुरु वचन का हर सपना,
बढ़ते चलो
सतगुरु गुरु वचन का हर सपना साकार करो, सतगुरु गुरु वचन का हर सपना साकार करो, सतगुरु गुरु वचन का हर सपना साकार करो,
बढ़ते चलो
गुरु वचन का हर सपना साकार करो, सतगुरु गुरु वचन का हर
चलो।
हजूर बाबा जी मुंबई गए हुए थे तो शास्त्री जी हमारे JRD सत्याहती जी ने कहा कि बाबा जी का ध्यान है कि आपने जो है अब मुंबई से हमारे साथ दिल्ली चलना है। इस तरह से दिल्ली में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के साथ लगातार 34 वर्ष करीब करीब हर टूर में ही दास जाता रहा और दास के ऊपर इतनी बड़ी रहमत है कि बाबा जी खुद थॉट देते थे, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस थॉट पर लिखना है, और हिंदुस्तान के करीब हर भाषा में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी, नेपाली तो बहुत सारे गीत हैं, इंग्लिश, जर्मनी भाषा के गीत, जहाँ जहाँ बाबा जी गए सदगुरु की कृपा से दास ने हर भाषा के गीत लिखे। रात रात भर उन महात्माओं के साथ बैठना, उनसे भाषा सीखनी, आने को क्या कहते हैं, जाने को क्या कहते हैं, इस तरह उनसे पूछना और फिर सुबह गीत तैयार करना, ऐसे ऐसे सदगुरु ने गीत लिखवाए। ये जो बंदा ऐसे गीत लिख नहीं सकता, सदगुरु जिसको जिस काम के लिए चुनता है उससे वो काम करवा लेते हैं, ये सदगुरु की कृपा से ही लिखा जाता है। एक बार की बात है कि बेंगलोर में सत्संग चल रहा था, हमारे कमल गीतकार को बाबा जी ने बुलाया, स्टेज पे बैठे थे, उनको कोई मैसेज दिया और कमल जी दौड़ दौड़ के मेरे पास आए तो कहने लगे हजूर का ध्यान है 4-5 भाषा का एक ही गीत बनाइए, एक कन्नड़, एक तमिल, एक तेलुगु, एक मलयालम, इन 4 भाषा को एक साथ मिलाकर गीत एक ही होना चाहिए। अब मुझे वहाँ की भाषा ही नहीं आती है। दास तो हैरान हो गया, बाबा जी ने, सदगुरु ने कैसा हुक्म दिया, चलो जिसने हुक्म दिया वही बनाएंगे। मैंने वहाँ के मलयालम महापुरुष को भी पकड़ा, कन्नड़ महापुरुष को, उनको लेके स्टेज के पीछे। अभी इष्ट संगत चालू ही है, विचार के पहले दास का गीत होना था। इस तरह से चार भाषा का एक गीत भी वहाँ बन गया। वहाँ से शुरू किया, तेलुगु से पहला मानुड़ा मानुड़ा इक्कड़ा रानी को सुखम दोरो कोनो, ये तेलुगु। फिर मलयालम था नल्लद्वर तट्टे येलावरकुम पारब्रह्म दय्यम। फिर कन्नड़ था देवने सर्वे रिगे सुखा वागली, तमिल में भी था। तो इस तरह से सदगुरु ने हर जगह इस तरह के गीत लिखवाए। और ये जो भक्ति गीतों का, गैर फिल्मी गीतों का जो जन्म हुआ मिशन में, हम हल्द्वानी गए हुए थे, हमारे मिशन के पुरातन गीतकार पंडित हरिमोहन शर्मा, आदरणीय बाबू गीतकार जी, दास शास्त्री जी, बाबा जी, ये कुछ 85 की बात है। उस टूर पे सदगुरु माता जी, जिनको हम पूज्य माता जी कहा करते थे, वो थे नहीं। तो हजूर बाबा जी के साथ शास्त्री जी बैठा करते थे गाड़ी में। तो हल्द्वानी में एक आर्य समाज मंदिर में प्रोग्राम हुआ, शर्मा जी ने भी गाया, दास ने भी गाया, बाबू गीतकार जी ने भी गाया।
तूने सजाई बनाई किस्मत है मेरे रहबर है बंदा परवर, भूले कभी ना तेरी ये रहमत है मेरे रहबर है बंदा परवर। हो तूने सजाई बनाई किस्मत है मेरे रहबर।
और हमें लगा कि हमने तो बहुत अच्छा गाया, क्योंकि संगत तो खुश थी। उसके बाद शास्त्री जी ने इतना ही कहा कि बच्चों वो गीत तो तुमने गाया, लेकिन ये आर्य समाज मंदिर है, इसमें गाने जैसा तो कुछ था ही नहीं, हजूर को भी कुछ पसंद नहीं आया। तो हमने बहुत ही गंभीरता से ली नहीं ये बातें, हल्के में ली, शास्त्री जी तो कहते रहते हैं। तो अचानक शास्त्री जी मेरे को कहते हैं, बेटे ऐसा है अभी नैनीताल जाना है, पहाड़ी रास्ता है, मेरा जी खराब हो जाता है, बाबा जी के साथ मैं बैठा हूँ, कहीं उल्टी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए सतगुरु के साथ, ऐसा कर तू बैठ जा बाबा जी के साथ। तो दास ने पहला तो मना किया, मैंने बोला मैं नहीं बैठ सकता वहाँ, मुझे डर लगता है गुरु के साथ। नहीं नहीं बैठ बेटे, हमारा पिता है, गुरु है, डरने की क्या बात है, मैं बैठा नहीं हूँ, तू भी बैठ जा। तो पीछे मेरी वाली सीट पे वो आ गए सेवरलेट गाड़ी में, हजूर के साथ दास को बिठा दिया। तो वहाँ हजूर मेरे को कहते हैं आस्था से, कोई ऐसे मंदिरों में कहीं भी जो चले, इस टाइप के भजन नहीं बन सकते जो फिल्मी धुनों पर आधारित ना हो। तो मैंने ठीक से सुना नहीं, मैं समझ नहीं पाया। तो आगे जेडी शर्मा जी बैठे थे, दिलबाग जी गाड़ी चला रहे थे। जेडी शर्मा जी कहते हैं, जगत जी हजूर बाबा जी आपसे कुछ कह रहे हैं। तो दास ने संकोच में डर डर के हाथ जोड़ के कहा, हाँ जी। कहते हैं वो गैर फिल्मी हो, जैसे कहीं भी चले ऐसा कोई भजन, तो फिर भी मैं, मेरी हिम्मत नहीं हुई यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि ये तो सदगुरु ने खुद ही करवाना था। तो वो भी जवाब जेडी शर्मा जी कहते हैं, जगत जी बोलो बाबा जी से, आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। तो दास ने ऐसे ही कहा। फिर नैनीताल में गए, हम रुके थे कहीं, तो शर्मा जी, बाबू जी और दास का एक ही कमरा था, वो बेड पे सो गए। दास को नींद नहीं आई, बाबा जी की वो बातें, वो मंदिर में चलने जैसे भजन, कहीं भी चले कोई भी समाज का बंदा गाए तो उनको लगे कि हमारा भजन है, हमारा गीत है। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक 10 गीत बने, और 10 गीत को दास ने फाड़ दिया, नहीं ये जो सदगुरु चाह रहे हैं वो नहीं है। अचानक फिर ये रंगदेव प्रभु नाम के रंग में गाया।
रंगदेव प्रभु नाम के रंग में गाया, रंगदेव प्रभु नाम के रंग में काया, रंग न ले इस चंचल मन को, रंग न ले कहीं मेरे मन को, अपने रंग में माया।
प्रभु नाम के रंग में का
दे प्रभु नाम के रंग में काया।
ये गीत बना और साथ साथ धुन भी बनती गई। दूसरे दिन फिर अल्मोड़ा में प्रोग्राम हुआ, दास ने ये गीत गाया, बाबा जी बड़े खुश। और एक साल तक हर जगह बाबा जी अपने आप ही कहते थे रंग दे प्रभु गाओ। उसके बाद भक्ति गीत, ये प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति में शक्ति महान, ये सारे भक्ति गीतों का जन्म हुआ। और उसका नतीजा उसका ऐसा निकला कि आज यूट्यूब में आप देखिए हर जगह इन गीतों को गाया जा रहा है, प्रभु चुनरी मेरी, सत्संग वो गंगा है, रंग दे प्रभु, प्रभु चैन की बजा दो बंसी, मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, गफलत में सोने वाले, हर जगह इन भजनों को गाया जा रहा है, सांसों का क्या भरोसा। अब वो हजूर का ध्यान था कि ऐसे भजन बने कि सारे संसार में, और मंदिर में तो प्रभु चुनरी मेरे गाते ही गाते हैं, भक्ति के रंग में रंग देना।
प्रभु चुनरी मेरी
और स्कूल में वो गीत सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, बॉम्बे के स्कूलों में सुबह प्रार्थना के रूप में गाते हैं। तो ये सदगुरु खुद शक्ति देते हैं, ये खुद काम करवाते हैं। दास कोई बहुत साहित्यकार नहीं, ना ही कोई बहुत ही ऐसा कुछ पढ़ा लिखा, और गीत गाने के लिए इस भाव से भी नहीं था कि मेरी कला को लोग देखें। मेरा तो ये था कि सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करना है संसार में, जैसे कबीर ने किया, जैसे तुलसी ने किया, उनको पूर्ण सदगुरु मिले, तो मुझे पूर्ण सदगुरु मिला है, मुझे भगवान मिला है। आप भी आओ, आप भी पाओ, यही आवाज़ देना था। कोई कला दिखाने के भाव से कभी गाया ही नहीं। एक बार भूल से बॉम्बे में दाता ने आवाज़ अच्छी दी थी, चला गया जहाँ ये उदित नारायण अपने अनुराधा पौडवाल जिस जगह गाते थे, वहाँ मैं भी चला गया, तो मैं एक महीने तक आया ही नहीं संगत में, थोड़ा रंग गया उस रंग में, मैं भी बच्चा ही था। तो ऋषि जी बॉम्बे वाले वो गोपी जी से और से पूछे कि भाई किधर है ये जगत, बच्चा नज़र ही नहीं आ रहा है, ढूंढो उसको कहाँ है। तो मैंने गोपी जी को एक दो पास दे रखे थे कि मेरा प्रोग्राम है षणमुखानंद हॉल में, जैसे आजकल टीवी में सारे गमा ये होते हैं तो वहाँ से चुन के ले जाते हैं गायकों को, तो पहले ये सुविधाएँ नहीं थी, तो हॉल में प्रोग्राम होते थे तो वहाँ कोई फिल्मों के संगीतकार गायक को चुन कर ले जाते थे। तो मैं गाने के लिए चला गया, ऋषि जी को पता चला कि गया है, तो ऋषि जी ने कहा हम दोनों चलते हैं। तो ऋषि जी भी चले गए, और मुझे पता नहीं वो दर्शकों में बैठे हैं, क्योंकि दर्शक की तरफ जो होता है वो सारा अंधेरा अंधेरा होता है, पता नहीं लगता है कि कौन बैठे हैं। तो वो भी बैठे थे, वो प्रोग्राम के बाद पीछे आए, अपनी गाड़ी में बिठाया, चेंबूर भवन ले गए, और लेकर मुझे बहुत डांटा, मैं तुझे कबीर तुलसीदास बनाना चाहता हूँ, उस रूप में देखना चाहता हूँ, तू वहाँ गाने चला गया, वहाँ नहीं जाना है। फिर वो परेशान हुए थोड़ा, और कांता माता से रात को कहने लगे, ये हमारे बच्चे गोपी भी जो है वो मराठी नाटकों में चला जाता है, जगत तो कभी जाता नहीं था, ये भी बाहर गया, तो हम इन बच्चों का दिल लगा रहेगा, जब बाबा जी आए बॉम्बे तो हम गुरु वंदना का प्रोग्राम करते हैं, ताकि ये लोग इसी में ये गीत भी गाएं, थोड़ा एक्टिंग भी करें, इनका शौक पूरा हो जाएगा। तो मिशन में इस तरह से गुरु वंदना का प्रोग्राम ऋषि जी ने शुरू किया, तो ये ऋषि जी की भी देन थी। फिर हजूर बाबा जी समय समय पर खुद लिखवाते रहे। 92 में जब बम ब्लास्ट हुआ बॉम्बे में, तो उस समय मैंने एक गीत लिखा, ऐ हिरसो हवस के मत वालो, अल्लाह से डरो ईश्वर से डरो, इंसान बनो इंसान बनो, अल्लाह से डरो ईश्वर से डरो। तो उसमें लास्ट में कुछ ऐसा भाव लिखा, जैसी करनी वैसी भरनी टाइप की, कि जो तुम बो रहे हो कल वही काटोगे। तो गाने से पहले कल गाना था, हजूर बाबा जी ऊपर छत पर सैर कर रहे थे, तो मैंने कहा एक बार दिखा लेता हूँ। तो हजूर को मैंने दिखाया, हजूर कल ये गाना है समागम में मौके के अनुसार। तो सारा सुना सुना सुना, फिर अंत में जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बाबा जी रुक जा, ये लाइन काट दे, ये दुनिया कहती है जैसी करनी वैसी भरनी, हमने ये भी नहीं कहना है, बल्कि उनके लिए भला मांगना है, उनका हित मांगना है, उनके लिए अच्छा ही मांगनी है। ये नहीं बोलना है कि तुमने गलत किया तो तुम्हारे साथ गलत होगा। इस संतरे को काटो, इसकी जगह लिखो कि दातार उनका भी भला कर, उनको सुमति का दान दो, सद्बुद्धि का दान दो, ऐसा लिख। तो इस तरह वो फिर लास्ट का अंतरा जो बाबा जी ने चेंज कराया।
नफरत को दिल से मिटा के प्यारे अमन को अपना के बन जाए सब इंसान, यही धर्म है महान। नफरत को दिल से
ये कृपा हुई और बाबा जी के साथ पूरे 34 साल टूर किए और दातार की इतनी कृपा हुई, खुद लिखवाते भी रहे। और एक बार तो फॉरेन में किसी से मेरे सामने ही हजूर ने कहा कि इसको जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ये लिखता है, हालांकि दातार खुद ही लिखवाने वाले। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बड़ी रहमत हुई दास के ऊपर। वैसे ज्ञान तो शहनशाह जी थे, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज जी थे, उसी समय दास ने लिया हुआ था और उस समय से ही गा रहा था, लेकिन जो गीतों की झड़ी लगी वो बाबा हरदेव सिंह जी के योग में। वो भी मसूरी में मैंने कुछ 50-60 गीत ही लिखे थे अभी। दातार की कृपा है कि मुझे गीत जो लिखता हूँ याद भी हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहते। तो मसूरी में मेरी डायरी गुम हो गई तो मैं थोड़ा परेशान हुआ, तो पूज्य माता जी कहने लगे क्यों परेशान होता है डायरी गुम हो गई तो, जो बाद में सदगुरु माता जी के रूप में प्रकट हुए। मैंने कहा मेरे 60-70 गीत थे माता जी, सब गुम हो गए। 60-70 गीतों की बात करता है तो ऐसा वरदान दिया उन्होंने कि गीतों की झड़ी लगेगी, इतने गीत लिखेगा तो पूछ मत, वो गुम हो गया चिंता मत कर, आगे बढ़। और ये गीतों की झड़ी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के युग में हर तरह के गीत लिखवाए, आगमन के गीत, जब बाबा जी कहीं से आते थे, जैसे इंग्लैंड गए हैं कि जा रहे हो जाओ सारे जग में सुख बरसाओ, हृदय के सम्राट मगर तुम जल्दी लौट के आओ, अभी दिल भरा नहीं है, अभी दिल भरा नहीं है। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, राज माता जी, पूज्य माता जी ने बहुत प्यार दिया। और मैंने पहले ही बताया कि मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, तो पहली दफ़ा बाबा जी नेपाल जाने का, बाबा जी ने बोला मैं हमने नेपाल जाना है, चड्डा साहब ने बुला के कहा और कहा कि तुम्हारे शहर में प्रोग्राम करना है, फिर कहने लगे तुम्हारे घर में जाना है। तो मैं खुश हुआ, लेकिन जैसे ऑफिस से बाहर आया तो परेशान हुआ। मैं बोला कैसा घर है वहाँ पहाड़ों में, कच्चे घर कच्चे मकान और जेब में एक पैसा नहीं, और बाबा जी कहते हैं वहीं जाना है। मैं परेशान सा कॉलोनी में रात को सैर कर रहा था, खाने के बाद सामने से बेकल जी सैर करते हुए आए, कहने लगे जगत जी मुबारक हो, माता जी बाबा जी आपके घर नेपाल जा रहे हैं। तो मैंने हाँ हाँ सर हिलाया, तो फिर मेरे को थोड़ा दूर ले जाकर कहते हैं पैसे वैसे माया वाया है, मैंने कहा माया तो है नहीं। तो कहते हैं कल सुबह आप मेरे घर आ जाओ, तो उनके घर गया तो उन्होंने एक लिफाफे में रुपये मेरे हाथ में पकड़ाया, बोला आप ले जाओ, जब आएंगे आपके पास लौटा देना। तो मैं तो खुश हो गया, नेपाल गया, देखता हूँ कि वहाँ कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, कच्चा सा मकान, अगर बाबा जी खड़े होते हैं कमरे के अंदर तो बाबा जी की पगड़ी ऊपर छत को लग सकती है ऐसी जगह। तो दास ने कमरा ही खुदवा दिया। इस तरह से हजूर गए और घर के जितने कपड़े थे सड़क तक बिछा के, ऐसे दास रोता जाए बाबा जी हंसते जाए। उसी कमरे में हजूर सोए, खूब गहरी नींद में सोए और उठकर जे डी शर्मा जी से कहते हैं शर्मा जी बहुत अच्छी नींद आई, और सारे गांव के लोग कहने लगे आज ऐसा नज़ारा हो गया जैसे शबरी और राम का मिलन है। हजूर बाबा जी इस तरह से नेपाल गए।
सर्वज्ञ है तू, अल्पज्ञ हूँ मैं, असीम है तू, मैं सीमित हूँ, सर्वज्ञ है तू, अल्पज्ञ हूँ।
पाता हूँ। तू दानी है मैं भिखारी हूँ, मैं तेरा दिया ही खाता हूँ। पाता हूँ जब जब भी जग में मैं तुझसे जीवन पाता हूँ। पहले भी अब भी आगे भी, पहले भी अब भी आगे भी।
उसके बाद उसी साल दास को फॉरेन ले गए वर्ल्ड टूर पे, तो बेकल जी भी साथ में थे। हम शिकागो पहुंचे तो दास ने पैसे गिन के उनके हाथ में रख दिया। तो वो अंदर चले गए बाबा जी माता जी के पास, दास भी पीछे पीछे गया। तो अंदर जो है बाबा जी से माता जी से कहते हैं दोनों से कि जगत ने पैसे दे दिए, क्या करूँ। फिर माता जी ने वो पैसे लिए बेकल साहब से। बाहर आके बेकल जी को दास ने पूछा, बेकल जी पैसे आपने दिए थे तो आप माता जी को क्यों दे रहे हैं। तो बेकल जी कहते हैं मैं कहाँ से देता, वो बाबा जी माता जी ने ही कहा था कि हम वहाँ जा रहे हैं उसके पास पैसे नहीं होंगे, हम देंगे तो लेगा नहीं, इस तरह से तुम दो उसको। तो कहने का मतलब सदगुरु बाबा जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सदगुरु माता जी, राज माता जी से अपार प्यार मिला। और समय समय पर दास ने कभी अपने आप को इस भाव में भी लिया ही नहीं कि मैं कोई बड़ा गायक हूँ, गीतकार हूँ। बस भाव एक ही था कि सच्चाई की आवाज़ संसार के कोने कोने में कैसे पहुँचे। कहीं कहीं तो ऐसे ऐसी जगह भी आई जैसे उड़ीसा, बिहार। हमने जाकर खुद स्टेज लगाना होता था, खुद लोगों को इकट्ठा करना होता था गा गा के।
बस एक है अपना नारा जग में हो भाईचारा, बस एक है अपना नारा जग में हो भाईचारा। नफरत को मिटाना है यहाँ प्यार अमन का, हमने संसार बसाना है। बस एक है अपना नारा जग में हो भाईचारा।
तो लोग इकट्ठे होते थे, फिर हजूर बाबा जी जाके प्रवचन करते थे। और ऋषि जी के समय भी कहीं कहीं एक ही घर होता था, हम जाते थे वहाँ गीत गाते थे, गीत गा के लोगों को इकट्ठा करते थे। वो दुनिया वालों आओ, राम मिलाने वाला आ गया है, इस टाइप के गीत। आओ अपने परमात्मा को देखो, वो जिज्ञासु जितने हो आओ, परमात्मा को देखना चाहते हो तो देखो, इस तरह की आवाज़ें देने का काम करवाया, ये सेवा ली सद्गुरु ने। और इस भाव से कभी गाया भी नहीं गया कि यहाँ कला का प्रदर्शन करना है, कला दिखानी है। तो एक लाइन पहले मैंने कही कि भगत मनोमंथन करता है, मनोरंजन नहीं करता है। जितने भी मेरे साथी अब आ रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, उनके चरणों में यही विनती है कि हम इस भाव से गुरु के दर पे गीत ना गाएं कि यहाँ हमने कला का प्रदर्शन करना है, बल्कि भक्ति भाव से गाएं कि सच्चाई की आवाज़ बुलंद हो, संसार में सच्चाई की आवाज़ फैले और अपने गुरु के लिए गाएं। हजूर बाबा जी ने तो एक दिन साफ शब्दों में मुझे कह दिया था, जो मेरी शिक्षा है, जो मेरा मिशन है, जो मैं चाहता हूँ वो बातें लिख, मेरी तारीफ नहीं करनी है बल्कि मेरी शिक्षाओं को, मेरे मिशन को, मेरे संदेश को दुनिया तक पहुँचाना है। अगर रंग हो तो गुरु प्रेम का हो, सच्चाई का रंग हो, मिशन के संदेश देने का रंग हो। और इस भाव से कभी ना गाएं कि लोग सोचेंगे वाह वाह क्या गाता है। जिनसे मैं संगीत सीखने जाता था, मैंने कहा मैं पीर वाला हूँ, तो उन्होंने कहा आपके अंदर से जो गाओगे वही संगीत बन जाएगा, अगर आप सही में सद्गुरु वाले हो, पीर वाले हो। लेकिन जिस दिन आप कला दिखाने के भाव से गाओगे, सीख कर गाओगे, तो आपके अंदर एक अभिमान सा होगा कि मैंने सीखा हुआ है, देखो मैं सरगम जानता हूँ, देखो मैंने कितनी अच्छी चीज़ लिखी है। तो वो चीज़ें जो है उतना प्रभाव नहीं डालेगी जो आप भक्ति भाव में गाओगे, मस्त होकर गाओगे, आनंद की अवस्था में गाओगे, वही प्रभाव करेगी वो चीज।
मालिक खालिक तेरा सांस में सिमरन हो, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण हो। मालिक खालिक तेरा, जितनी भी मिली है जिंदगी बीते तेरे एहसास में, आ जाए चट्टानों जैसी मजबूती विश्वास में, शिकवा नहीं हो शुक्र हो, चिंता नहीं हो चिंतन हो,
शिकवा नहीं हो शुक्र हो, चिंता नहीं हो चिंतन हो।
मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण हो।
तो कहने का मतलब, आज तक आपने इसी भाव में गवाया, हजारों हजारों गीत लिखवाए, हर वक्त के गीत लिखवाए, आगे भी यही चाहता हूँ, सदगुरु के चरणों में विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि इसी तरह से आप लिखवाओ, हम क्या लिखेंगे, और इसी तरह से गवाओ जब तक श्वास है, और आपकी सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करें, चाहे गाकर हो चाहे विचार करके हो, इस सत्य को संसार भर में फैलाने का काम आप कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा योगदान, ये जो यज्ञ है सत्य का यज्ञ, इसमें थोड़ा बहुत आहुति मैं भी देता रहूं, आखिरी श्वास तक देता रहूं। इतना कहकर मैं इजाजत चाहूंगा।
चलती ही रहे तेरे इशारे पे जिंदगी, कुर्बान नजारे पे जिंदगी, चलती ही रहे तेरे इशारे पे जिंदगी। हर लम्हा तेरी याद, तेरा नाम हर घड़ी, नाम हर घड़ी, हर लम्हा तेरी याद, तेरा नाम हर घड़ी, जिंदा है जगत तेरे सहारे पे जिंदगी, जिंदा है जगत तेरे सहारे पे जिंदगी, चलती